नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब ने कहा है कि विकासशील और अल्पविकसित देश ये तय करेंगे कि भविष्य में विश्व व्यवस्था कैसी होगी और इसमें भारत की अहम भूमिका होगी। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में मुख्य भाषण देते हुए राष्ट्रपति स्तूब ने स्वीकार किया कि आज विश्व राजनीति में कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस मानक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल गया है, विकासशील और अल्पविकसित देशों के पास अर्थव्यवस्था और जनसंख्या दोनों ही मजबूत पक्ष हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पश्चिमी प्रभुत्व वाले विश्व का युग अब समाप्त हो गया है, लेकिन पश्चिम में इसे पूरी तरह समझने में कुछ समय लगेगा। भारत और फिनलैंड के बीच आज नई दिल्ली में पर्यावरण सहयोग, प्रवासन और आवाजाही तथा सांख्यिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब के साथ कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है।
आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की दो बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है।
कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि देश युवा और सबसे गतिशील कार्यबल के साथ विश्व की वैश्विक कौशल राजधानी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। नई दिल्ली में फिनलैंड के रोजगार मंत्री मतियास मार्टिनेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति पर अपनी साझा चिंताओं और संवाद तथा कूटनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए घनिष्ठ सहयोग और समन्वय जारी रखेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्जी से बातचीत की। उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से भी चर्चा की है। कई देशों के शामिल होने के साथ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तेज हो गया है। अमरीका और इसराइल ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं और ईरान मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला भी ईरान के साथ हमलों में शामिल हो गया है। क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए इसे खतरा बतलाते हुए कई देश चिंता व्यक्त करने के साथ स्थिति को शांत करने का आह्वान कर रहे हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान ने आज ईरान पर अपने नखचिवान क्षेत्र पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। कतर ने भी ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाया है। सऊदी अरब ने कहा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने कई ड्रोन नष्ट कर दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। आज सुबह ईरान ने इसराइल और अमरीका पर फिर हमले किए। इस बीच ईरान ने इसराइल के दिमोना परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की धमकी दी है और इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति बाधित हो गई है। श्रीलंका ने पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री विजिता हैराथ ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्जी के साथ हुई चर्चा में ये चिंता व्यक्त की। अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सतर्क और शांत रहने, अधिकारियों के सुरक्षा दिशा निर्देशों और परामर्श का भी पालन करने की सलाह दी है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।